नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। और स्वागत करता हूँ दी अनचार्टेड स्टोरीज ऑफ महाभारत के एपिसोड 17 में, विदुर द मोस्ट वर्दी किंग ऑफ हस्तिनापुर। तो दोस्तों, विदुर के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, या फिर बहुतों के लिए ये एक ऐसा नाम है जिसे सुना तो कई बार है, लेकिन एक्चुअली में कौन थे या फिर महाभारत से कैसे रिलेटेड थे, उनका रोल क्या था, शायद से ये नहीं पता होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इससे पहले कि इस एपिसोड में हम आगे बढ़ें, आप लोग प्लीज़ मेरा पहला एपिसोड धृतराष्ट्र को ज़रूर से सुन लें, क्योंकि इस एपिसोड के कुछ इंसिडेंट जो हैं वो वहाँ से जुड़े हुए हैं। और फिर अगर वो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो वो फिर स्टोरी सुनने में थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए किसी भी मोमेंट पे आप डिसकनेक्टेड फील ना करें, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि पहला एपिसोड ज़रूर से सुन लें। और अगर आप लोगों ने पहला एपिसोड सुन रखा है तो उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। तो फिर चलिए जानते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो राजा बनने के लायक होने के बावजूद, सारे गुण होने के बावजूद, उनको राजा क्यों नहीं बनाया गया। बिल्कुल स्क्रैच से बताता हूँ, जिन्हें कुछ भी नहीं पता कि विदुर कौन थे या फिर वो महाभारत से कैसे रिलेटेड थे या कुछ भी बातें। तो विदुर असल में धृतराष्ट्र और पांडु के भाई लगते हैं, और वो हस्तिनापुर, मतलब जहाँ के अभी धृतराष्ट्र राजा हैं, वहाँ के वो मेन सलाहकार हैं, मतलब वो गाइड करते हैं धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र चूँकि अंधे हैं तो वो उनको डिसीजन लेने में ये हेल्प करते हैं, और विदुर चूँकि धृतराष्ट्र और पांडु के भाई लगते हैं इसलिए वो रिलेशन में पांडवों के और कौरवों के वो चाचा लगेंगे। अच्छा, विदुर को उस समय का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, लॉयल और एक ऐसा इंसान माना जाता था कि धर्म को ये सबसे अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। और ऐसा भी बोलते हैं कि तीनों लोक में ऐसा कोई नहीं था जो इनकी बुद्धि का सामना कर सके, या फिर ये जो नीति बनाते हैं उसका कोई सामना कर सके। मतलब सिर्फ कृष्ण को ही ऐसा बोला गया है कि कृष्ण के बाद अगर कोई नीति बना सकता है और उसका कोई काट निकाल सकता है तो वो विदुर ही थे। अच्छा, ये तो मैंने आपको विदुर के बारे में एक मोटा मोटी एक रफ आइडिया बता दिया कि वो कौन थे, रिश्ते में क्या लगते थे या फिर उनका काम क्या था, उनका गुण क्या था। आइए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा लायक होने के बावजूद वो राजा क्यों नहीं बने। अब इसका रीज़न जो है उनके पैदा होने की कहानी से रिलेटेड है। अब उस कहानी के लिए मैं आपको उस टाइम पे ले चलता हूँ जब विचित्र वीर्य नाम के जो राजा थे वो हस्तिनापुर पे राज करते थे। अब विचित्र वीर की दो बीवियाँ थी, एक थी अंबिका, दूसरी थी अंबालिका, और इनकी माँ का नाम था सत्यवती। अब क्या होता है कि विचित्र वीर की मौत बहुत अर्ली स्टेज में हो जाती है, मतलब बिना संतान दिए वो गुजर जाते हैं। अब सत्यवती जो विचित्र वीर की माँ है, उनको टेंशन होता है कि बेटा तो बिना संतान दिए ही गुजर गया, तो अब अगले जनरेशन का क्या होगा, ये राजगद्दी कौन संभालेगा। तो वो क्या करती है कि अपने एक दूसरे पुत्र को बुलाती है जिसका जन्म सत्यवती के शादी के पहले हुआ था, और वो है व्यास, मतलब वेद व्यास ही है। तो अब वेद व्यास को वो बुलाती हैं और वो कहती हैं कि तुम इस खानदान को दोनों बहुओं से एक एक उत्तराधिकारी दो। अब वेद व्यास जी जो हैं वो योगी साधु इंसान हैं और वो जंगल में तपस्या कर रहे थे जब उनको बुलाया गया। अब जब वो आते हैं तो बिना तैयार हुए आ जाते हैं, और वो जाते हैं बड़ी रानी के पास, अंबिका के पास जाते हैं, और अंबिका से वो कहते हैं कि हमें अगला जनरेशन देना है तो आप इसका परमिशन दें। लेकिन अंबिका देख के इतना डर जाती है उनके रूप को कि वो आँख बंद कर लेती है, तो जिसके कारण क्या होता है कि जो बच्चा पैदा होता है वो अंधा पैदा होता है और उसका नाम होता है धृतराष्ट्र। अब ये बात आके वो सत्यवती से बताते हैं कि रानी ने आँख बंद कर लिया था। तो अब वो कहती कि ठीक है, अब तुम छोटी वाली रानी के पास जाओ। तो फिर वो छोटी वाली रानी के पास जाते हैं, अंबालिका के पास। अब अंबालिका इनका रूप देख के वो डर जाती है और एकदम पीला पड़ जाती है, जैसा कहते हैं कि खून सूख जाता है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, जो बच्चा पैदा होता है वो एकदम कमज़ोर पैदा होता है, जो होता है पांडु। अब कुछ समय बीतता है लेकिन सत्यवती के दिमाग में ये बात अभी भी घूम रहा है कि जो उत्तराधिकारी आया है, वो जो जनरेशन आया है वो हेल्दी नहीं है। तो इसके लिए वो फिर से बुलवाती है और बोलती है कि फिर से तुम एक नया उत्तराधिकारी दो। अब पहली रानी अंबिका, जो पहले से ही व्यास जी के रूप से इतनी डरी हुई रहती है कि वो दोबारा हिम्मत नहीं कर पाती है उनके सामने जाने की, तो वो अपने जगह अपनी दासी को बेडरूम में भेज देती है। अब दासी जो है वो वेद व्यास जी से वो डरती नहीं है, वो बहुत डिवोशन के साथ उनसे रिलेशन बनाती है, तो जिसके कारण क्या होता है कि जो बच्चा पैदा होता है वो बहुत ही नॉर्मल और हेल्दी होता है। अब यही बच्चा जो एक दासी और वेद व्यास जी के रिलेशन से बनता है, पैदा हुआ था, वो कहलाते हैं विदुर। तो इस तरह से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ये तीनों आपस में भाई होते हैं, जिनके बायोलॉजिकल फादर जो है वो वेद व्यास जी हैं। और इन लोगों में डिफरेंस सिर्फ यही है कि धृतराष्ट्र और पांडु की जो माएँ हैं वो रानियां हैं, और जो विदुर हैं इनकी माँ जो है वो दासी होती हैं। तो जिसके कारण सब ऐसा कहते हैं कि उनमें रॉयल ब्लड नहीं है, राजघराने का खून नहीं है, इसलिए उनको राजा नहीं बना सकते हैं। और ये शायद बहुत सारे रॉयल फैमिलीज में मुझे लगता है कि ये फॉलो भी होता आया है शुरू से, बहुत पहले से। तो खैर, विदुर में राजघराने का खून नहीं था इसलिए उन्हें राजा नहीं बनाया गया था। जबकि कहते हैं कि वो फिजिकली फिट थे, मेंटली फिट थे, उनमें नीति बनाने की शक्ति इतनी अच्छी थी कि तीनों लोक में कोई उनका टक्कर नहीं दे सकता था। उनके पास एक ऐसा अस्त्र था जो विष्णु जी ने उनको खुद से दिया था, मतलब एक ऐसा धनुष था, कहते कि उसका तोड़ कोई नहीं था। यहाँ तक कि अर्जुन, जो बाद में सबसे बड़े धनुर्धर बनते हैं, उसके पास भी इस धनुष का कुछ काट नहीं था। तो ये तो कहानी थी कि सब गुण होने के बावजूद भी क्यों विदुर को राजा नहीं बनाया गया था। अब आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि जो बड़ा बेटा होता है वो हमेशा सिंहासन पे बैठता है, तो इस हिसाब से उस टाइम पे धृतराष्ट्र सबसे बड़े बेटे थे और राजगद्दी पे धृतराष्ट्र को ही बैठाने जाने वाला था। लेकिन ये विदुर होते हैं जो वो कहते हैं कि राजा जो है वो फिट होना चाहिए, अगर राजा अंधा हुआ तो वो न्याय नहीं कर पाएगा। तो धृतराष्ट्र और पांडु में कंपैरेटिवली पांडु ज़्यादा फिजिकली फिट थे, इसीलिए राजा पांडु को बनना चाहिए ना कि धृतराष्ट्र को। और तब से ये एक रूल शुरू हो गया है कि जो फिजिकली और ज़्यादा मेंटली दोनों तरफ से फिट होगा वही बैठेगा राजगद्दी पे, चाहे आप बड़े क्यों ना हो, चाहे आप छोटे क्यों ना हो। और धृतराष्ट्र को ये बात चुभ जाती है और वो इस बात को मन में दबा के रखते हैं कि विदुर के कारण उसका जो अधिकार है वो उसको मिला नहीं, मतलब राजा बनने का जो अधिकार था वो विदुर के कारण छिन गया। तो ये तो कहानी थी विदुर के राजा ना बनने की और उनके एक बुद्धि का एग्जाम्पल कि उन्होंने कैसे कैसे नीतियों को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना शुरू किया था, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि विदुर असल में धर्मराज के रूप थे। अब धर्मराज वो हैं जो हम सभी लोगों का सही गलत का जो डिसाइड करते हैं कि भाई इतना पाप किया है, उतना पुण्य किया है, तुम्हें इस बात का इतना पनिशमेंट मिलेगा, ये मिलेगा, तो वो धर्मराज है। तो धर्मराज को एक टाइम पे श्राप मिला था कि तुम इंसान बन के पैदा लोगे, और वो विदुर के रूप में वो पैदा होते हैं। तो इसके पीछे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है और ये बात बहुत पहले की है, मतलब महाभारत से बहुत पहले का समय है। तो उस टाइम पे कुछ चोर एक राज्य में चोरी करके वो एक मुनि के कुटिया में जाके छिप जाते हैं। अब वो मुनि जो हैं उनका नाम होता है मांडव्य। अब मांडव्य मुनि अपने कुटिया के बाहर बैठ के अपना मेडिटेशन या पूजा पाठ जो है वो चुपचाप पूजा कर रहे होते हैं। इतने देर में जितने सिपाही लोग हैं वो लोग आते हैं, ढूंढते हैं इधर उधर, तो उनकी नज़र पड़ती है भाई कि मुनि जी बैठे हैं, मुनि से पूछते हैं। तो वो मुनि से पूछते हैं कि यहाँ पे चोर लोग आए हैं, आपने देखा है क्या चोरों को? अब चूंकि मांडव्य मुनि अपने मेडिटेशन में वो बिजी थे, मतलब एकदम पूरा शांत होके बैठे थे, तो वो कुछ रिप्लाई नहीं करते हैं। इधर सिपाही लोग ढूंढते ढूंढते कुटिया के अंदर जाके जितना चोर लोग है उसको पकड़ लेता है। अब उनको क्या लगता है कि जो ऋषि मुनि बाहर बैठे हैं वो भी इन चोरों के ग्रुप के मेंबर हैं, तो उन लोग चोरों के साथ साथ मुनि मांडव्य को भी साथ में पकड़ के राजा के सामने लेके चले जाते हैं। अब राजा वहाँ पे उस टाइम पे इन सभी जितने भी चोरों का ग्रुप था और साथ में मांडव्य मुनि को भी एक बड़ा ही खतरनाक सा सजा देते हैं। अब उस सजा को कहते हैं कि वो उन्हें इम्पेल किया जाए, मतलब उसका होता यह है कि एक बड़ा सा पोल होता है जो कि बहुत नुकीला होता है, मतलब ऐसा भाले टाइप का होता है, और उसके ऊपर जो भी चोर है या फिर उसको बिठा दिया जाता है, तो वो धीरे 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 वो शरीर के अंदर वो भाला घुसता जाता है और इंसान जो है वो ब्लीड करते 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 बहुत तकलीफ में वो मर जाता है। तो अब सबको ये पनिशमेंट दे दिया जाता है, लेकिन मुनि मांडव्य जो थे वो बहुत पहुँचे हुए मुनि थे, मतलब बहुत योग वाले इंसान थे, तो वो अपने आप को अपने योग शक्ति से वो अपने आप को जिंदा रखते हैं। अब ये बात राजा को पता चल जाता है, तो राजा को लगता है कि अरे ये तो ऋषि मुनि हैं, बहुत पहुँचे हुए ऋषि मुनि हैं और उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो वो दौड़ते भागते गिरते पड़ते पहुँचते हैं, बहुत माफ़ी मांगते हैं, पैर वैर पकड़ के कहते हैं कि माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। तो खैर मुनि मांडव्य जो रहते हैं वो राजा को माफ़ कर देते हैं और वो पहुँचते हैं धर्मराज के पास में। अब वो धर्मराज से पूछते हैं कि पूरे लाइफ टाइम में मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, किसी को तकलीफ नहीं दी है या फिर अधर्म के रास्ते पर नहीं चला, फिर भी मुझे ये इतना बड़ा पनिशमेंट क्यों झेलना पड़ा अपने लाइफ में। तो धर्मराज कहते हैं कि मुनिवर, आपने बचपन में छोटे छोटे जो पतंगे होते हैं उनकी शरीर में ना अपने कीले घुसाए हैं जब आप बहुत छोटे थे, तो आपके ये उसी कर्म का ये आपका फल है जो आपको भोगना पड़ा है। तो इस बात पे मुनि मांडव्य गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उस वक्त तो मैं एकदम नासमझ बालक था, मुझे सही गलत का कुछ अंदाज़ा ही नहीं था, और उस छोटे से नासमझी एज के लिए अभी इतना बड़ा सज़ा जो दिया है, इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पृथ्वी लोक पे जन्म लोगे और एक शुद्री के कोख से पैदा लोगे। और वो शुद्री जो थी वो अंबिका और अम्बालिका की दासी थी, मतलब विदुर की माँ, और राजघरानों में ये शूद्र या शूद्री को बहुत नीची नज़रों से देखा जाता था कि बहुत लो कास्ट हैं। तो खैर ये तो था उनके पिछले जन्म के बारे में। अभी मैं आपको बताता हूँ कि विदुर का महाभारत की लड़ाई में क्या रोल था। तो बहुत से लोग जानते होंगे या फिर जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बताऊँ कि विदुर ने महाभारत की लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन अगर वो पार्टिसिपेट करते तो वो जिस साइड से लड़ते उस साइड को हराना बहुत मुश्किल हो जाता, और चूंकि वो राजगद्दी के सपोर्टर थे, मतलब हस्तिनापुर के ही वो सपोर्ट में थे, तो उनको कौरवों के तरफ से लड़ना पड़ता। क्योंकि एक तो इनकी बुद्धि जो थी वो कृष्ण के टक्कर की थी कि कृष्ण उधर जितना नीति बनाएंगे उसका काट इधर विदुर कर देंगे। इसके अलावा अस्त्र और शस्त्र ज्ञान जो इनका था वो बहुत ही खतरनाक था। ऊपर से इनको जो एक धनुष मिला हुआ था विष्णु भगवान से, जिसका नाम गोवर्धन था, उसका काट अर्जुन के पास भी नहीं था, तो इसीलिए ये जिधर से लड़ते वो बहुत वन साइडेड हो जाता, और ये कृष्ण को बहुत अच्छी तरीके से पता था। तो इसीलिए उन्होंने एक ऐसा कुछ तो चाल चला कि जिसके कारण विदुर पार्टिसिपेट नहीं करे। और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग सी कहानी भी है। तो बात तब की है जब लड़ाई शुरू होने में कुछ टाइम था, बट डिसाइडेड था कि भाई लड़ाई तो होनी है दोनों ग्रुप के बीच में। तो आखिरी बार पांडव लोग कृष्ण को भेजते हैं एज अ शांति दूत कि आप जाइए और सलाह मशवरा करके कि अगर किसी बात से अगर ये टल जाए या कुछ हो के लड़ाई अगर नहीं हो तो वो बातचीत करने के लिए आप जाइए पांडवों का रिप्रेजेंटेटिव बन के। अब कृष्ण जाते हैं, तो कृष्ण के जाते ही क्या होता है कि दुर्योधन एकदम भयानक टाइप से आदर सत्कार करते हैं उनका, एकदम पूरा एकदम ग्रैंड आदर सत्कार करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि रात में वो दुर्योधन के महल में ही रुकें। अब कृष्ण को पता था कि दुर्योधन उनके महल में रुकने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि इसके पीछे उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, या तो वो इन सब आदर सत्कार के बदले उनको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि वो कौरव की तरफ से लड़े, या तो फिर कुछ ऐसी बातें करेगा जिससे कि वो पांडवों का साथ छोड़ दे। तो वो ये सब सोच के वो इसका जो ऑफर है वो ठुकरा देते हैं और वो कहते हैं कि मैं विदुर के घर पे मैं रात में रुकूंगा। अब विदुर के घर में रुकने का दो रीजन था। एक तो था कि विदुर और उनकी वाइफ श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, एक तो वो था, और दूसरा ये था कि विदुर के यहाँ रुकने का मतलब था कि विदुर बिना किसी इंटेंशन से इनका आदर सत्कार करेंगे। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हालांकि विदुर मंत्री तो थे, लेकिन कभी भी वो राजमहल का पैसा अपने खाने पहनने के लिए यूज़ नहीं करते थे। वो खाने का सामान वो खुद से ही आसपास में खुद से वो उगाते थे और वही खाते थे। रीज़न जो भी रहा हो, कृष्ण मना कर देते हैं दुर्योधन को कि भाई नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, मैं विदुर के यहाँ रुकूंगा। अब दुर्योधन इस बात से बड़ा चिढ़ जाता है, एकदम गुस्से में एकदम बौखला जाता है कि श्री कृष्ण को ऑफ़र किया, उन्होंने ऑफ़र ठुकरा दिया, और गुस्से में कहता है कि अगर किसी भक्त के घर पर रुकना था तो कर्ण के यहाँ रुक जाते, क्योंकि कर्ण भी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। और एकदम गुस्से में वो दूसरे दिन राज्यसभा में आता है और अपना सारा गुस्सा जो भी रहता है वो पूरा विदुर पे निकाल देता है, और विदुर को इतने बुरी तरीके से वो इंसल्ट करता है वहाँ पे, उनको कहता है कि तुम दासी के बेटे हो, तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ बैठने की, तुम जासूस हो, तुम दुश्मनों को आश्रय देते हो, उनका जासूस बन के घूमते हो, मतलब जितना जितना तरह का एक होता है कि इंसल्ट जिस लो लेवल तक करना चाहिए वो इंसल्ट करता है। अब विदुर जो है मतलब एक ऐसे इंसान थे जो धर्म को बहुत स्ट्रिक्टली मानते थे, बहुत लॉयल थे, अब उनको ये चीज़ एकदम बर्दाश्त नहीं हुआ, और ऊपर से उनका जो भाई है धृतराष्ट्र जो राजा है वो भी दुर्योधन को नहीं रोक रहे थे अपने बेटे को, वो भी कुछ मना नहीं कर रहे थे, तो ये सुन के विदुर को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब इधर कृष्ण जो है वो सारा कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं कि वो बेइज्जत कर रहा है और विदुर बहुत गुस्से में है, तो कृष्ण क्या करते हैं इस मौके का फायदा उठा के वो जोर से चिल्ला के दुर्योधन से कहते हैं कि तुम ऐसी बातें करके बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि इसका रिजल्ट ये भी हो सकता है कि विदुर कुरुक्षेत्र की लड़ाई में तुम्हारी तरफ से लड़ाई ना करे। अब कृष्ण को ये पता था कहीं ना कहीं कि विदुर अगर उधर से लड़े तो भाई उन लोग को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तो उनका नीति बहुत डेंजरस है, ऊपर से उनको किसी भी तरह का श्राप नहीं है, जैसे कि भीष्म पितामह को एक श्राप था या फिर कर्ण को श्राप था कि टाइम आने पे वो उसका सब कुछ भूल जाएगा, या भीष्म पितामह अगर औरत आएगी तो वही उसको मारेगी, तो इस तरह का कुछ श्राप नहीं था विदुर को। तो कृष्ण जानते थे कि ये अगर उधर से लड़े तो फिर इनको हराना मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए ये इस मोमेंट को यूज़ करते हैं और ये बात विदुर के दिमाग में भर देते हैं। अब विदुर तो गुस्से में थे ही, वो कृष्ण को कहते हैं कि अच्छा वो आपने ये बात अभी उठा दी, और वो गुस्से में बोलते हैं कि इस लड़ाई में न तो मैं पांडवों के साथ रहूंगा और ना ही मैं कौरवों का साथ दूंगा, और ऐसा कह के वो धनुष को तोड़ देते हैं जो विष्णु जी ने उनको दिया था, और तोड़ के वो राजमहल के बाहर चले जाते हैं। और इस बात का अफसोस दुर्योधन को एकदम लास्ट में होता है जब वो देखता है कि कृष्ण जो भी टैक्टिक्स अपना रहे हैं, जो भी वो नीति बनाते हैं, वो कितना हेल्पफुल हुआ पांडव लोग को जीतने के लिए, और अगर विदुर होते इनकी साइड से तो वो सेम हेल्प इनको विदुर से मिल सकता था इसी तरह का नीति बनाने में। तो अभी तो ये बातें हो गई कि विदुर कौन थे, कितने बुद्धिमान थे, कितने धर्म को पालने वाले थे, और उन्होंने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया था। अब इसके अलावा विदुर का इज्जत इसलिए भी लोग करते हैं क्योंकि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो वो एकमात्र ऐसे इंसान थे जिन्होंने बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई थी। इनके अलावा एक और कौरव में से एक भाई थे जिनका नाम था विकर्णा, तो विकर्णा और विदुर ये सिर्फ दो लोग थे जिन्होंने पूरे इंसिडेंट के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई थी द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था। तो इसके अलावा ये भी कहते हैं कि इन्होंने पांडवों को बहुत बार बचाया था। एक बार ऐसा हुआ कि दुर्योधन पांडवों के लिए एक घर बनवाता है और इनको कहता है कि आप लोग जाके उसी घर पे रहना, लेकिन ये विदुर ही होते हैं जिनको ये गड़बड़ लगता है कुछ, और वो जब पता करवाते हैं तो पता चलता है कि वो जो घर असल में बन रहा है वो मोम का बन रहा है, और उसमें बाकी जो भी चीज़ें हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें तुरंत आग पकड़ सकता है। अब वो ये बात जो है वो युधिष्ठिर को इनडायरेक्टली बताते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर और विदुर आपस में ना पहली में बातें करते थे ताकि आसपास के लोग समझ नहीं सके। तो विदुर युधिष्ठिर से पहली में कहते हैं कि बिना धातु का अस्त्र भी नुकसान पहुंचा सकता है, और कई बार नुकसान की जलन को संभालना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि ये संस्कृत में है, मैंने एक मोटा मोटी आपको बताया कि रफली इस तरह का एक पहेली में उन्होंने बताया कि आग से रिलेटेड कुछ आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाला है। अब विदुर क्या करते हैं कि वो समझ जाते हैं कि कुछ तो इस तरह का प्लॉटिंग है उनको जला के मारने का, तो वो दुर्योधन विधन को किसी को कुछ बताते नहीं है कि भाई हमें पता चल गया है, हमें पकड़ लिया। वो चुपचाप एक सुरंग खुदवा देते हैं उस महल के नीचे से, और जहां से बाद में ये सारे पांडव निकले वहां से सेफ निकल जाते हैं। दोस्तों, विदुर के इस एपिसोड में अगर विदुर नीति के बारे में अगर मैंने कुछ नहीं बताया तो ये शायद से एपिसोड अधूरा रह जाएगा। तो विदुर नीति असल में ये कॉन्वर्सेशन है, ये बातचीत है धृतराष्ट्र और विदुर के बीच में। जब एक रात धृतराष्ट्र बहुत बेचैन रहते हैं तो वो विदुर से कहते हैं कि मुझे कुछ बातें बताओ जिससे मुझे कुछ सुकून मिले। तो ये कॉन्वर्सेशन है उनके बीच का जो बाद में विदुर नीति कहलाता है, जो आज के डेट में बहुत सारे लोग अपने लाइफ में उन बातों को फॉलो भी करते हैं। बहुत सारे कॉरपोरेट कंपनीज़ में उनको फॉलो किया जाता है और लोग रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने चाणक्य नीति सुना होगा, चाणक्य नीति का यूज़ भी सुना होगा, बहुत सारे बिजनेस स्कूल में यूज़ किया जाता है। लेकिन कहते हैं कि चाणक्य नीति के आने के बहुत पहले विदुर नीति ही थी। विदुर नीति को लोग पहले फॉलो करते थे और उसका सीक्वल एक तरह से चाणक्य नीति है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, बट हाँ कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ, जिससे कि डेली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आसानी हो सकती है। जैसे विदुर नीति में कहा जाता है कि लाइफ में अगर कुछ डिसीजन लेना हो तो जहाँ तक हो सके इमोशंस को थोड़ा साइड में रख के लें, ताकि इमोशंस से आपका डिसीजन में कोई फ़र्क नहीं पड़े। फिर अगर जब आप खा रहे हैं तो कोशिश करें कि अपना खाना किसी के साथ शेयर करके खाएं, और अगर लाइफ में किसी से कुछ सजेशंस लेना हो तो कोशिश करें ऐसे लोगों से सजेशंस लेने के लिए जिन्हें एक्सपीरियंस हो। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा बुज़ुर्गों से बात करते रहना चाहिए, उनका गाइडेंस लेते रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, उन्हें पता है सही गलत क्या है नहीं है। और ये भी कहा गया है कि जो आपके करीबी लोग हैं, जो आपके बारे में सच बोलते हैं भले ही कड़वा क्यों ना हो, उन्हें हमेशा साथ में रखना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में वही आपके काम आएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है आपके साथ शेयर करनी चाहिए थी, इसलिए मैंने बताया। आशा करता हूँ कि आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, इस कठिन दौर में इंसानियत को जगाए रखें और जहाँ तक हो सके एक दूसरे की मदद करते रहें। हमेशा की तरह कहना चाहूँगा कि मेरा मकसद आप लोगों तक सिर्फ अनसुनी और रोचक कहानियाँ पहुँचाने तक का है, बिना किसी रिलीजियस बिलीफ को चोट पहुंचाए हुए। दोस्तों, अब आप कुछ सुनाओ यार के एपिसोड्स बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ कुकू FM पे भी सुन सकते हैं और अपने अपने सुझाव वहां मुझे भेज सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ सुनाओ यार के फेसबुक पेज के जरिए या यूट्यूब चैनल के जरिए या इनफैक्ट इंस्टाग्राम के जरिए भी आप मुझे अपने सुझाव को भेज सकते हैं। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए किरदार और कुछ रोचक कहानियों के साथ में। तब तक के लिए सुनते रहिए कुछ सुनाओ यार में, ओनली विथ अमित रवानी।